राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बल धामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वात्जातम् नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे तिनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने। कई आदमी भी ऐसे हैं जिनके कई नाम होते हैं। उस आदमी का सर्टिफिकेट में और ही नाम होता है, बोलता नाम और ही है, कोई उसको और ही नाम से बोलते हैं। ऐसे ही भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, नाम चार है, शरीर एक है। भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में, संत महात्माओं के प्रवचनों में हमको कहीं अच्छापन लगता है, कीर्तन में खूब मन लगता है, भजन में बड़ा आनंद का अनुभव होता है, अच्छा लगता है, कथा वगैरह सुनते हैं तो इच्छा होती और सुनते रहे, कीर्तन में इच्छा होती और बैठे रहे और सुनते रहे, लीला में प्रवेश कर गए तो बस और लीला सुनते रहे। ये जो भावना है इसको भगवान का स्वरूप समझना चाहिए, यही भगवान का रस है। यही भगवान का स्वरूप है, यही हमारा गुरु है, यही हमारी भक्ति है। भक्तिर भक्तर भगवंतर गुरु, ये सब कुछ वही है। तो भक्तों के चरित्र से हम लोगों के मन में जल्दी भक्ति प्रज्वलित हो जाती है। कारण क्या है कि भक्त हमारे समान ही शरीर धारण किए हुए होते हैं, हमारी जिंदगी में वो जीते हैं, हमारे ही समान उनकी दिनचर्या है, व्यवहार है, परंतु कुछ एक कारणों से वो हमसे आगे निकल जाते हैं, भक्ति आ जाती है, तो उनको देख करके अपने मन में भी उत्साह हो जाता है। इसलिए महाराज श्री प्राय कहा करते थे कि भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए, और जहां हमारा हृदय उस चरित्र में पिघल जाए वहीं पर उस पुस्तक को बंद करके बैठ जाए चुपचाप, फिर थोड़ा उस चरित्र को पीछे से पढ़े, जो ही मन में कुछ भाव बने त्यों ही उस भाव में डूबना चाहिए। चरित्र पूरा पढ़ लो बाबा, पढ़ना इस दृष्टि से नहीं, भाव होना चाहिए। वो भाव है, वो भक्ति का भाव ही भगवत भाव कहलाता है। इसलिए भक्तमाल में भक्तों की महिमा ज्यादा कही, भगवान की ज्यादा महिमा नहीं कही। भगवान की महिमा तो भक्त की महिमा में अपने आप ही आ जाती है। भक्त नहीं हो तो भगवान के बड़ी मुश्किल हो जाए, भगवान का काम नहीं चले। एक भगवान के भक्त थे, खूब प्रेम से भगवान का स्मरण कर रहे थे, खूब प्रेम से। भगवान के स्मरण करने में यदि प्रेम नहीं भी होता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारा भजन व्यर्थ चला गया है। ये देखो उसको कोई दुख होता है क्या? भगवान का स्मरण करते हैं तो कोई दुख होता है क्या? कि दुख तो नहीं होता, दुख नहीं होता, यही सुख है। दुख नहीं होता, ये सुख है, सुख परम सुख है। यही प्रेम हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, पर दुख नहीं होता। आज तक किसी भगत ने नहीं कहा कि हम तो भगवान का स्मरण किए बहुत दुख पाए, इससे तो ज्यादा भगवान का स्मरण नहीं करते तो बड़े आराम होते। ऐसा कोई भगवान का भक्त मिला नहीं, शास्त्रों में मिला नहीं, व्यवहार में भी कोई मिला नहीं। किन्हीं संतों के मुख से ऐसी बात सुनी नहीं कि जिसने प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति की हो और अंत में कह दिया कि हम तो बड़े दुख पाए। ये कहा शरण आए बहुत सुख पाए। हम भगवान की और भक्त की शरण ले ली, बहुत सुख पाए, ऐसा कहने वाले तो मिलते हैं। दुख पाने वाला एक भी भगत नहीं, तो दुख नहीं मिला, यही सुख है। उस भक्त में अब अपने द्रौपदी का नाम आया, पांडव कुंती द्रौपदी, अब द्रौपदी का नाम आया। मूल में द्रौपदी कौन थी? मूल में द्रौपदी इंद्राणी थी, इंद्राणी इंद्र की पत्नी का नाम था शची, शची कह दो, इंद्राणी कह दो। जैसे भगवान शंकर है, भव है, भव भव के भवानी, इंद्र के इंद्राणी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, ऐसे इंद्राणी का एक अंश था द्रौपदी। और यास तथा उपयास नाम के दो ब्राह्मणों ने राजा द्रुपद के यहां यज्ञ करवाया है, पुत्रेष्टि यज्ञ। उसमें से धृष्टद्युम्न तो पुत्र के रूप में पहले निकला, उसके बाद द्रौपदी पुत्री के रूप में बाद में आए हैं। इसलिए द्रौपदी का शरीर भी दिव्य है और पांच पति के होने पर भी द्रौपदी की दिव्यता समाप्त नहीं होती। द्रौपदी का इस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ, अग्नि के अंदर जो ही आहुति दी, अग्नि प्रज्वलित हुई, उसमें से द्रौपदी प्रकट हो गई। राजा द्रुपद के यही क्यों हुई कि द्रुपद ने देखा कि इस कौरव वंश का नाश करना है, कौरव वंश के नाश के लिए द्रौपदी पैदा हुई। इसीलिए जब स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठाया तो इसने कहा कि मैं सूत पुत्र के यहां पैदा नहीं होऊंगी, सूत पुत्र के गले में जयमाला नहीं पहनाऊंगी, सूत पुत्र को मैं पति नहीं बनाऊंगी। एक कथा तो यूं आती है, एक कथा आती है कि जो भगवान शंकर की पत्नी सती जी है वो ही द्रौपदी है। देखो आपको नई नई बात मिलती है, ये भक्तमाल की कृपा है। बात क्या हुई कि देवताओं की जो गऊ है जिसको होम धेनु भी कहते हैं, काम धेनु भी कहते हैं, वैसे होम धेनु में और काम धेनु में थोड़ा फर्क भी है, पर इतना है कि देवताओं की गऊ बड़ी दिव्य है, बहुत श्रेष्ठ है। बड़े जा रहे थे अपने प्रेम के अंदर जा रहे थे, गौ माता जितनी खुश होती है उतनी गौ माता दूसरों को अपनी खुशी देती है। गौ माता जहां सुखपूर्वक ऐसे सांस छोड़ती है वहां का वातावरण ही बड़ा अच्छा होता है। गौ का स्पर्श हो जाए पवित्र हो जाए, फिर वो तो देवताओं की गौ थी, देवताओं की गौ। वो गाय जा रही थी, उसके पीछे पीछे सांड थे पांच गोधा, वो भी जा रहे टोड़ा है। तो सती जी और गंगा जी ये दोनों उधर से जा रहे थे, उन्होंने ये टोड़ा देखा, टोड़ा देखा तो उन्होंने कहा कि देखो ये गाय है, देवताओं की गाय कहलाती है, ऐसी है वैसी है क्या है, ये सब टोड़ों के साथ में रहती है, ऐसा कुछ कहा। तो उसी समय में देवताओं की गौ ने कपिला ने उनको शाप दे दिया कि जाओ अगले जन्म में तुम पांच की पतियां होंगी, पांच की पत्नियां होंगी, तुम्हारे पांच पति होंगे। और गंगा जी भी हंस रही थी, गंगा जी को कहा कि तुम्हारे ही वंश में वो पुरुष होंगे, तुम गंगा जी हो, भगवान शंकर के यहां सिर पर रहती हो। सती जी आप भगवान शंकर के बाईं ओर विराजती हो, तो गंगा जी ऊंची जगह रहती हैं, तो अगले जन्म में आपको ऊंचा स्थान मिलेगा। और सती जी आप इनके सामने पोती बहू, पड़पोती बहू बनकर के रहोगी, और पांच पति होंगे तुम्हारे, शाप दे दिया। सती जी को ये बात बुरी लगी कि मेरे तो एक भगवान शंकर है वही है, फिर पांच पति का शाप लग गया है, मैं तो जन्म जन्म तक शंकर के अलावा किसी को चाहती नहीं, और ये ऐसा देवताओं की गौ ने मुझे शाप दिया है, बड़ी हिम्मत हो गई इसकी, इसको हम शाप दे सकते नहीं, गाय को क्या शाप दे। सती जी आई और अपने स्थान पर बैठी, बड़ी उदास रहने लगी, रोने लगी। भगवान शंकर ने पूछा सती जी कई दिनों से उदास देखता हूं, पूछने की हिम्मत नहीं हुई, पर आज बहुत ज्यादा तुम उदास हो, बात क्या है। सती जी ने कहा कि हे प्राणनाथ भगवान शंकर, मैंने अपने जीवन में आपके अलावा किसी को भी स्वीकार नहीं किया, और आज मुझे इतना बड़ा शाप मिला है, दुनिया में कितनी बड़ी मेरी बदनामी होगी, और वो और किसी ने नहीं, देवताओं की गौ कामधेनु ने मुझे श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि बस मैं आपको कहते भी मुझे बुरा लग रहा है, सोचते भी बुरा लगता है, सुनते ही बुरा लगता है, क्या कहूं। भगवान शंकर ने कहा धीरज रखो, कुछ कहो तो सही। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनको कह देने से समाधान मिल जाता है। क्या महाराज, मैं कह नहीं सकती, ऐसा मुझे श्राप दिया, मैं मेरे मुंह से क्या कहूं। भगवान शंकर ने कहा देखो वो कपिला गौ है, गौ के द्वारा संसार में कभी किसी का अहित नहीं होता। साधारण गौ होती है उससे भी सबका हित होता है, ये तो साक्षात देवताओं की कपिला गौ, कपिला गौ है जिसकी भौहें सफेद, कान के यहां सफेदी, पूंछ के अंदर सफेदी, चरणों में सफेदी, वो कपिला गौ होती है, असुंदर होती है। अभी देवताओं की बात बताओ, तुम्हारे क्या है काग महाराज, इस गौ के पीछे कई पशु जा रहे थे, सांड वगैरह के जा रहे थे, तो हमको हंसी आ गई, ऐसे हमने मजाक कर ली। तो ये देवताओं की गाय है ना, इसने आव देखा न ताव देखा, ये भी नहीं देखा कि भगवान शंकर की दासी है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। मैं क्या बोल रही हूं, मुझे कहा अगले जन्म में तुमको पांच पति मिलेंगे, मेरी क्या इज्जत रहेगी महाराज। आपस में बैठते हैं, हंसी मजाक हो ही जाती है, इतना बड़ा श्राप दे दिया मुझे। महाराज आप तो प्रलयंकारी है, प्रलय मचा देने वाले हैं, क्या आपको इस बात से कोई क्रोध नहीं आया? उल्टे भगवान शंकर हंसे, भगवान शंकर हंसे तो कहा कि क्या बात है, जहां क्रोध नहीं करना होता है वहां थोड़ी सी बात पर आपको बड़ा क्रोध आ जाता है, और ये यहां तो बहुत बड़ा क्रोध, आपको हंसी आ रही, हंसी आ रही है। क्यों? गाय गाय, गाय के मुख से कभी भी किसी का बुरा निकल ही नहीं सकता। अरे गाय का गोबर अपवित्र नहीं होता, गोमूत्र अपवित्र नहीं होता, उसका वचन कैसे अपवित्र होगा, खराब होगा? गाय के मुख से निकला हुआ वचन पवित्र होगा। यह पवित्र क्या महाराज, मेरे पांच पति होंगे। फिर कहा देखो सती घबराओ मत, तुम बहुत घबरा रही हो इसलिए मैं तुम्हें मिल रहा हूं, मैं ही पांच रूप में आऊंगा, मेरे रूप पांच बनेंगे, हूं तो मैं एक ना, मैं ही पांच रूप में आऊंगा, मैं ही धर्म के रूप में, मैं ही वायु के रूप में, मैं ही इंद्र के रूप में, मैं ही अश्विनी कुमारों के रूप में मैं आऊंगा, आप आएंगे तब तो मेरा व्रत रह गया। कि यही बात है, गाय के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। तो सती जी तो थी द्रौपदी, और भगवान शंकर थे पांच पति। इस प्रकार से एक ही पति और एक ही पत्नी, यही रहा भाव। एक जगह आता है कि ये द्रौपदी इंद्राणी तो थी, इंद्राणी थी तो अब इंद्राणी के पीछे इंद्र आना चाहिए, एक ही इंद्र आना चाहिए था, पांच पति कैसे हुए? तो वहां ये कथा आती है कि देवराज इंद्र ने त्वष्टा का जो पुत्र था विश्वरूप, उसका वध कर दिया। ये विश्वरूप था, ये त्वष्टा का बेटा था, देवताओं ने इसको अपना गुरु बनाया है, क्योंकि बृहस्पति जी अभी नाराज हो गए थे, देवताओं को छोड़कर चले गए, देवताओं पर आफत आई, आफत को दूर करने के लिए विश्वरूप ने आकर के यज्ञ किया, पर वो विश्वरूप था वो दैत्यों की बहन का लड़का था, तो विश्वरूप ने देखा कि ये मेरे मामा लगते हैं दैत्य लोग, और इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मैं अपने काकाओं चाचाओं ताऊओं को जिताने के लिए मैं मंत्र बोल रहा हूं। तब विश्वरूप ने क्या किया, थोड़ा उनका भी पक्ष ले लिया, उनके लिए भी मंत्र की आहुति दे दी, थोड़ा उनके परिवार का मोह हो गया विश्वरूप के। इंद्र पहचान गए, इंद्र ने कहा कि तू हमारा ब्राह्मण है और तू अपने मामा का पक्ष लेता है। विश्वरूप के तीन सिर थे, उन्होंने उसको काट दिया इंद्र ने। तो इंद्र ने काट दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, तो इंद्र का एक अंश इंद्र को छोड़कर के चला गया और वो जाकर के धर्मराज में मिल गया, एक एक अंश। इसी प्रकार से जब त्वष्टा ने अग्नि में से वृत्रासुर को पैदा किया और इंद्र ने वृत्रासुर को मारा, तो फिर उसका दूसरा अंश था वो वायु में चला गया और इंद्र ने गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या, उसके सामने वो गौतम का रूप बना करके गए, तो गौतम ऋषि ने उसको शाप दिया, अपनी पत्नी को भी दिया और इंद्र को भी दिया। तब इंद्र का जो सौंदर्य था वो सौंदर्य निकल करके दो भागों में विभक्त हो गया, वे ही जो है अश्विनी कुमारों में चला गया और एक अपना स्वयं का स्वरूप था ही। तो जो धर्मराज में इंद्र गया वो युधिष्ठिर बना, जो वायु देवता में इंद्र गया वो भीमसेन बना, और जो अश्विनी कुमारों में इंद्र का भाग गया वो नकुल और सहदेव बना, और जो स्वयं का रूप था वो स्वयं अर्जुन के रूप में आया। इस प्रकार से एक ही इंद्र है चार पांच रूपों में आया, आया तो चार रूपों में, बाकी नकुल सहदेव तो एक ही है, तो चार रूपों में आया, तो एक ही पत्नी हुई, पांच की पत्नी कहां हुई। इसलिए द्रौपदी को सतियों में माना जाता है, द्रौपदी है, कुंती है और तारा है। जो यहां जिनकी कथाओं में विचित्र विचित्र प्रसंग आते हैं, हम उनके गहराई में जाने के लिए टलवा टलवा क्या मंदोदरी है, अहिल्या है, अहिल्या द्रौपदी तारा मंदोदरी कुंती तथा ये सब पांच कन्या, इनमें कभी कन्यात्व का लोप होता ही नहीं। अर्जुन ने निशाना मारा उसके लक्ष्य वेद के, तब उसके बाद अर्जुन को कहा कि भाई इसके साथ विवाह होगा, तो भाई उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम हमारी मां के पास जाएंगे। मां के पास गए, मां ने कहा भिक्षा आई तो बांट लो, तुम आपस में बांट लो। तो कहा कि मां आज तो हम वो जीत के आए, लक्ष्य वेदन करके आए, स्त्री ला रही, मैं धर्मराज की मां हूं, मेरे मुंह से कभी अधर्म की बात निकली नहीं, आज ये मेरे मुंह से कैसे निकल गई कि द्रौपदी को तुम पांचों में बांट लो। कैसे बांटोगे, टुकड़े करोगे या बांटने के लिए कैसे बांटोगे? युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर बेटा मेरी बात झूठी भी नहीं हो और शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन भी न हो। शास्त्र के अंदर तो यही आता है कि जिसने जीता है वही उसी की पत्नी रहेगी, शर्त तो यही है। ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, मेरी बात भी नहीं तो असत्य बोलने का पाप लगता है, पापी का कल्याण नहीं होता। जिंदगी में कभी असत्य बोली नहीं, अधर्म बोली नहीं, मेरे मुंह से निकल गया, मुझे क्या पता कि स्त्री है। इतने में ही भगवान आ गए। भगवान आए, भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, पहले विवाह तो होने दो, उसके बाद तरकीब देखेंगे। इधर समाचार करा दिया द्रुपद के यहां कि आपकी कन्या का विवाह अकेले अर्जुन के साथ नहीं होगा, बल्कि अर्जुन के और चार भाइयों उनके साथ होगा। द्रुपद ने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब स्वयंवर में केवल अर्जुन ने ही लक्ष्य वेदन किया है तो मेरी शर्त तो यही है, करूंगा तो अर्जुन के साथ करूंगा, तो नहीं करूंगा। ऐसे करके वो भी अड़ गए। वेद व्यास जी महाराज वहां प्रकट हो गए द्रुपद के यहां। वेद व्यास जी ने कहा कि तेरी समस्या क्या है? वेद व्यास जी ने पूछा तो उसने सारी बात बता दी कि महाराज ऐसा कैसे होगा, लक्ष्य वेदन अर्जुन ने किया और विवाह पांचों के साथ, मैं तो नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्यों नहीं करोगे? कि कन्या का फेरा एक के साथ होता है, एक बार तेल चढ़ती है, जिसके साथ विवाह हो गया, मैं दोबारा दान दे नहीं सकता उसको कैसे दोबारा दान दूं? मैंने एक को दान दे दिया, अब उसका दूसरा फेरा कौन करे? तो क्या हम पांचों ही करेंगे? पांचों एक साथ करने से रहे कि एक एक जना विवाह करेगा? मेरी तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी, मेरे कुल में कोई ऐसी स्त्री नहीं हुई, कोई ऐसी प्रथा नहीं हुई, नहीं तो आगे दुनिया में बड़ा अधर्म फैलेगा। वेद व्यास जी सब करके कहने लगे कि देखो द्रौपदी है ना, इसकी उत्पत्ति तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नियम लगाते हो मानवीय पद्धति के और इसकी उत्पत्ति हुई अमानवीय पद्धति से। दिव्य रूप से इसकी उत्पत्ति हुई है तो मनुष्य धर्म में मनुष्य लोक के रहने वाले सारे नियम इस पर लागू थोड़े ही होंगे। क्या नहीं होंगे? तो महाराज है तो अभी शरीर तो मनुष्य का है ना, शरीर तो मनुष्य का है, मेरे लिए तो बड़ी विकट समस्या होगी। विवाह करते ही कन्या का कन्यात्व टूट जाता है, जो ही फेरा खाया और हथलेवा हुआ उसका कन्यात्व टूट गया, कन्या नहीं रही और मुझे कन्या ही देने का अधिकार है। व्यास जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं, द्रौपदी एक एक के साथ विवाह करेगी लेकिन इसका कन्यात्व भंग नहीं होगा। अब मैं कर करूंगा, कन्यात्व भंग नहीं होता है तो विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो एक एक के साथ विवाह होगा। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक एक के साथ विवाह हुआ। ऐसी द्रौपदी दिव्य थी। इसकी एक कथा और भी आती है। एक जन्म में ये ऋषि की कन्या थी, जंगल में रहती थी। इसके पिता ने कहा कि बेटा भगवान शंकर जैसा कोई दयालु संसार में है ही नहीं। बहुत दयालु है, बड़े कृपालु हैं। उनका नाम तुमने सुना कि नहीं, वो आशुतोष है, जल्दी राजी होने वाला है। तो तुम है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया। छोटी सी बच्ची ने पूछा कि क्या इससे मुझे भगवान शंकर दर्शन दे देंगे? कहाँ दे देंगे? मैंने तो सुना है उनके गले में सांप रहता है, वो सांप खाता तो नहीं है ना पिताजी? अरे बेटा, शंकर के गले का सांप तो शंकर के गले में रहने वाला जहर है उसको पीता है, वो तो पवित्र जहर पीता है। हम हमारे शरीर को क्यों डसेगा? एक कालबेलिए का नाग होता है, वो भी हमको नहीं डसता। वो भी कोई लोग उठाओ खेलो उसके साथ तो खाता नहीं। कालबेलिए का नाग उज्जैन के कुंभ मेले में गए थे, एक आदमी के पास अजगर, मोटा सा अजगर, पास में उसका भाई खड़ा था फोटोग्राफर। उसने कहा कि कोई आदमी इस अजगर को ले और अपने गले में डाल लो, ये अजगर यूं लिपट जाएगा, खाएगा नहीं, और आपको तत्काल हम फोटो खींच के फोटो दे देंगे। फोटो खींचा, हमारे साथ कई जने थे। कितना पैसा लोगे? ये 5 रुपया। ठीक है, फोटो खिंचाए उन लोगों ने, और वो अजगर इतना बड़ा ही नहीं, इतना बड़ा है पाटे के वाले, ये बहुत मोटा है, गले में डाला लपेटा खाया उसने, यूं उसको ट्रेनिंग दी गई। वो फोटो खींचे, फोटो खींचते ही बताया, अगर मेरे गले में इतना मोटा अजगर कितना अच्छा लगता है। दूसरे ने, तीसरे ने, कई लोगों ने फोटो खींचा अजगर। तो एक सपेरे के पास रहने वाला सांप लोगों का मनोरंजन करता है, वो भगवान शंकर के गले में रहने वाला सांप है। वो सांप रहता ही इसलिए है कि वो गले में जो जहर है, वो जहर सांप के पास भले आ जाए, शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसलिए भगवान शंकर का नाम लिया कर। तो ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलती थी। अच्छा, बच्चे लोग जो भक्ति करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा होती है, सच्ची श्रद्धा, क्योंकि बच्चा कुतर्क तो करता नहीं। हम लोगों के सामने तो कोई बात कह दे तो हम 10 बार सोचेंगे, कुतर्क करेंगे, अश्रद्धा करेंगे। ऐसा कभी संभव है क्या? ऐसा कोई हो सकता है क्या? पर छोटे बच्चे होते हैं, उनका हृदय सरल, जैसा कहे वैसा मान लेते हैं। माताओं बहनों का और बच्चों का हृदय सरल होता है, पुरुषों का हृदय तर्क प्रधान होता है। कोई भी बात होती है उसको बुद्धि की गहराई से सोचते हैं। माताएं बहनें होती वो भाव प्रधान होती है, भाव भावुक हो जाती है बहुत जल्दी, स्वभाव है। अब वो बच्ची ने क्या किया? ओम नमः शिवाय का जाप किया, बहुत प्रेम भाव से किया। शंकर जी प्रकट हो गए कि बोलो क्या वरदान चाहती हो? और ये प्रकट हो गया तो कहा कि मेरे को खूब अच्छा पति मिलना चाहिए, मुझे खूब अच्छा पति मिलना चाहिए, मुझे खूब अच्छा पति मिलना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा पति। 5 बार का भगवान शंकर ने कहा तो एक बार बोलती तो ही मैं सुनना सुन रहा हूं, तू नहीं बोलती हृदय में ही बोल के रह जाती तो ही मैं सुन लेता हूं। तू वैखरी वाणी से एक बार बोली, 5 बार बोलिए, तेरा अगले जन्म में तेरे को 5 पति मिलेंगे, अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे, 5 पति। तो बहुत बड़ी राजरानी होगी और तुमको बहुत अच्छे 5 पति मिलेंगे। तो कहा कि पांच पति होने से संसार में मेरी अब कीर्ति तो नहीं होगी, तेरी संसार में विलक्षण कीर्ति फैलेगी। इसलिए द्रौपदी सती कहलाती है, पांच पतियों के रहते हुए भी सती कहलाती है। और भी कई बातें आती हैं। भीमसेन था, वो फूल लेने गया। बात क्या हुई कि द्रौपदी एक जगह स्नान कर रही थी तो उसको सोने का फूल दिखाया, वो फूल ले आई, ला करके अपने पतियों से कहा कि ये फूल कोई ला करके मुझे दे, ऐसे पांच फूल ला के कोई दे सकता है क्या, पांच फूल चाहिए। अब कौन बगीचे के हैं क्या है वो मुझे पता नहीं। तो वो भीमसेन जी गए, मैं लेके आता हूं। भीमसेन जी थोड़े अखड़ थे, बुद्धि से काम कम लेते थे। भीमसेन जी बुद्धि से कम लेते, भूख्या से काम लेते, बुद्धि से कम लेते, थोड़ी सी बात है भूख्या तो मैं जाता हूं। तो वो गए, जाते 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 गंधमादन पर्वत की तरफ उधर गए तो वहां हनुमान जी महाराज मिल आए, बंदर छोटे से रास्ते में पड़े थे, जाड़ बूझ करके पड़े थे। आपने कथा सुनी है, अरे बंदर कौन है, हटिया से बुड्ढा हो गया, मेरा शरीर देखो कितना छोटा हो गया, मेरे से उठा नहीं जाता, तुम ही उठा के मुझे एक तरफ कर दो। अरे उठ, जानता है कि नहीं मैं भीम हूं, वायुपुत्र भी जानता है कि नहीं मैं हनुमान का छोटा भाई हूं। सो योजन लांग गया था हनुमान, उसका छोटा भाई कौन हनुमान वनुमान हम नहीं जानते, हम तो बुढ़े आदमी, हमको तो अलग कर दो तू। क्या देख तू अपना आप रास्ता दे दे, मेरे से मजाक मत कर, बहुत भारी पड़ जाएगा। कहा कि मैं उठ ही नहीं सकता हूं, तो चाहे कुछ ही कर ले, तो मैं उठा के अलग कर दू तो कर दे। वो पूंछ उठाए तो पूंछ के हाथ दब गया, उठा ही नहीं सके। अब उठाओ उठाओ जोर लगाओ, हनुमान के तुम छोटे भाई हो, हनुमान ऐसा ही था क्या। हनुमान जी बोले, पहचान नहीं पाया कौन है कि मैं हनुमान हूं। बहुत खुश हो गए। फिर भीमसेन जी ने कहा कि आप वायुपुत्र कैसे हुए, तो हनुमान जी ने अपनी बात बताई कि मैं वायुपुत्र कैसे हुआ। तब कहा कि तुम इंद्र हो, तो पांचों भाई होना इंद्र ही हो। द्रौपदी है ये पूर्व जन्म से शंकर जी की तपस्या करने वाली थी और शंकर जी के वरदान से तुम सब हुए हो, तुम पांचों ही इंद्र हो। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि द्रौपदी हम सब अलग अलग है और अलग अलग की पत्नी है, आप सबकी पत्नी है। देवताओं का बहुत बड़ा काम करने के लिए तुम लोग आए हो, ऐसे करके हनुमान जी ने परिचय दिया। ये तो है द्रौपदी की उत्पत्ति की बात। द्रौपदी के अंदर कितने गुण थे ये महाभारत पढ़ने वाला जानता है। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के राजा हो जाने पर नौकरों को कितना वेतन मिलता है, नौकरों का खर्चा कैसे चलता है, नौकरों का परिवार कितना है, कैसे उनका परिवार निर्वाह करता है, उसके अनुसार तनख्वाह मिलती है कि नहीं, इतना ध्यान रखती थी, इतनी प्रवीण थी बुद्धि में। और द्रौपदी उसके साथ साथ घुड़साल में जाती थी और जो घोड़ों की रक्षा करने वाले होते उनसे पूछते कि तुम्हारा परिवार में कौन है, हाथियों की रक्षा करने वाले थे उनके वहां जाती। युद्ध करने वाले सैनिकों से पूछती, सारा प्रबंध करती थी, पतियों की सेवा करती, राज के काम के अंदर जहां तक उसका बुद्धि का प्रवेश होता वो युधिष्ठिर महाराज की सहायता करती। परंतु राजसभा में बैठ करके कभी राज्य के संचालन में आगे नहीं आई। राजसभा राजाओं का काम, आप जाओ, घर का काम मेरा, घर मुझे देखना है, मैं जा जा। इतनी द्रौपदी कार्य कुशला थी। द्रौपदी के व्यवहार से पांचों पति द्रौपदी से बहुत संतुष्ट थे। एक बार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बहन हम आपसे कुछ बात पूछना चाहती हैं, कोई नाराज तो नहीं होगी? द्रौपदी ने कहा पूछो, क्योंकि आप एक होकर पांच पांच पतियों को प्रसन्न कर लेती हो, हम 16,108 रानियां हैं, हम एक पति को प्रसन्न नहीं कर सकती, बात क्या है? अपने पति को किस प्रकार अपने वश में करना चाहिए, इसका उपाय बताओ, कोई मंत्र बताओ। द्रौपदी नाराज हो गई, अरे जो आपका भर्ता कहलाता है, जो आपका स्वामी कहलाता है, जिसके वश में आपको रहना चाहिए, आप अपने पति को वश में करना चाहती हो? ये अच्छी स्त्रियों का काम है? आप कृष्ण की पत्नियां के अगर कितने ऊंचे पद पर बैठी हो और तुम्हारे अंदर ये भाव आते कि पति हमारे वश में रहे, भाव ये आना चाहिए कि हम पति के वश में रहे, ये तुम्हारे अंदर भाव ही क्यों आया है? ये भाव बताता है कि आप अपनी उत्तमता को खो चुके हो, आपकी जो गरिमा है उसको आप अपने स्वयं पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, खूब फटकारा कर रहे हैं। चुप हो गई सब। द्रौपदी जी ने कहा कि मेरी बात बुरी लगी क्या? कि बुरी नहीं लगी, होश आ गया। तब कहा कि देखो, परिवार में पति को खुश करना हो तो पति क्या किस समय कौन से या कौन सा काम चाहता है वो पहले से ही तैयार रखो, उसको कहना न पड़े, वैसी व्यवस्था बनाए रखो, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कामना न रखते हुए पति की सेवा करो, और अपनी कोई आवश्यकता पति को मत बताओ कि ये लाओ, गहना लाओ, गाठा लाओ, वो लाओ, अपनी तरफ से कोई काम मत सौंपो और सेवा करते जाओ, कुछ न चाहो और काम आ जाओ, ये है बस में करने का तरीका। उसके सब सब व्यवस्था कर दी, बैठे सब प्रकार का आराम दे और उनसे कुछ मत चाहो। द्रौपदी, मैं मेरे पतियों से पहले उठती हूं, मुझे आप किसी का भी हिसाब किताब पूछ सकते हो कि किसको कितना वेतन मिलता है, उसके महीने में कितना खर्च होता है और उसको किसकी कितनी आवश्यकता है, अपने जितने नौकर चाकर वगैरह हैं उनके घर में कभी जरूरी काम पड़ता है तो मैं राजकोष से अतिरिक्त पैसा दिलाती हूँ, विवाह शादी का हो गया, किसी के मरना वगैरह हो गया, कोई बीमारी वगैरह होगी तो पहले पैसा दिलाती हूँ। ये नौकर बस में रहते हैं, पति लोग हैं, ये आते हैं बाहर से, आते आते ही उनके लिए भोजन तैयार, मीठी वाणी से बोलती हूँ। पति कितने ही जिस समय खूब काम के अंदर व्यस्त हो और बड़े थके हुए हो उस समय बहुत प्रेम से बोलती हूँ, क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी हृदय की थकान को मिटाती है। मैं इनके एक एक दुख को पूछती रहती हूँ, आज क्या बात है, आज आप उदास क्यों हैं? जब पत्नी बड़े आदर स्नेह और प्रेम के कारण पति की उदासीनता पूछती है तो उस समय पति की सब थकान है और उसकी जो मन के अंदर कोई भावना है तो वो एकदम जो है उसकी ठीक हो जाती है, उसके मन में संतोष होता है कि मेरा दर्द कोई समझ रही है। पत्नी पति के अनुकूल चलने वाली होती है। पति को अनुकूल बनावे इसके लिए पत्नी नहीं होती है, वो पति के अनुकूल होकर चलती है। पति कभी नाराज से कुछ कह भी दे तो वो उस समय उस बात का कोई जवाब नहीं देती है, वो नाराज नहीं होती है। ऐसे ऐसे खूब उनको व्यवहार की बात हो रही है। द्रौपदी, हम लोग तो 16,108 है, हमारे में से कोई इतनी बात जानता ही नहीं है। इस प्रकार से द्रौपदी थी और भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। लोग कहते हैं भगवान की भक्ति तब होती है जब अंतःकरण एकदम शुद्ध होता है, निर्मल होता है, जिसके अंदर कभी काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, अहंकार नहीं, मद नहीं, कुछ भी नहीं, तब जाकर के भगवान की भक्ति होती है। द्रौपदी ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, भगवान को अपना मान लो, उसी से ही भक्ति हो जाएगी। वहां भक्ति हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि की बात ही नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये रहा कि भगवान संधि के लिए जा रहे हैं, द्रौपदी रो रही है बैठी। द्रौपदी रो रही है कि देखो कृष्ण ये क्या कर रहे हैं, मेरी तो प्रतिज्ञा है कि दुशासन के खून से सने हुए मांस आदि से मेरी मांग पूरी हो, मेरी चोटी गुंथी जाए, और ये यहां संधि का प्रस्ताव लेने जा रहे हैं, संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, राजीनामा कर देंगे तो फिर मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। बहुत क्रोध आया, तो क्रोध आया, भगवान जाने लगे, द्रौपदी ने हाथ पकड़े, ठहरो, कहां जाते हो? क्यों द्रौपदी? संधि कराने के लिए। संधि दिखती है आप, मेरे केस खुले पड़े हैं, मेरी प्रतिज्ञा दुशासन के खून से सने हुए हाथ से मांग भरने की हुई है, वो प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान ने कहा देखो द्रौपदी, उदारता से विचार करना चाहिए, ये एक तुम्हारी प्रतिज्ञा है, लेकिन ये तो सोचो कि कितना बड़ा कलह होगा, कितना नाश हो जाएगा भारत का, कितना बड़ा नुकसान होगा, कि होगा तो हमारा कितना नुकसान हुआ है, ये वो मैं मानता हूं। वो केवल द्रौपदी का नहीं, संपूर्ण नारी जाति का अपमान हुआ है, और उस अपमान के बीच में मैं भी दुखी हूं, परंतु मैं ये भी तो चाहता हूं, नहीं मैंने, अब देखो मेरे अंदर उसका बदला लेने का भाव है, मैं उसका बदला लिए बिना संधि करने नहीं दूंगी और तुमको जाने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि तब प्रिया सखी, मैं आपकी प्यारी हूं, सखी हूं आपकी, मैं आपसे मिली हुई हूं, मैं आपसे अभिन्न हूं, आप मेरे हो, मैं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे हो, मेरे, और आपकी मैं प्यारी सखी हूं। भगवान के कदम रुक गए वहीं, अब भगवान क्या बोले? तब भगवान ने प्रेम से उसकी चोटी को सहलाते हुए कहा, द्रौपदी इतना बैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा प्रतिशोध का भाव तुम्हारे के नहीं, ये क्या होता है, आप कैसे जा रहे हैं संधि का प्रस्ताव लाने? भगवान को अगली बात द्रौपदी के प्रेम के कारण से कहनी पड़ी कि द्रौपदी, मैं इसलिए जा रहा हूं कि इतिहास के अंदर लोग ये न कह दें कि वासुदेव कृष्ण ने किसी प्रकार का मेल मिलाप किया नहीं, इस कारण से युद्ध हुआ, लोग मेरे ऊपर जिम्मेदारी न डालें, और दूसरे लोग भी चाहे उनका काम सफल हो चाहे न हो, अपनी तरफ से काम करने का प्रयत्न करना चाहिए, आदर्श स्थापित करने जा रहा हूं, न तो कोई संधि होगी, न मेरी बात मानी जाएगी, यह युद्ध होगा, अवश्य होगा, और उसमें सब तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया सब मारे जाएंगे, और तुम्हारे मांग के अंदर वो ही दुशासन का खून आएगा, जो तुम सोच रहे हो वो सब होगा, लेकिन लोग मुझे न कह दें, इसलिए मुझे तो मेरा कर्तव्य का निर्वाह करना है, पर आगे की बात तुझे पहले ही कह देता हूं। भगवान ने पहले ही कह दिया द्रौपदी की तो युद्ध होगा। द्रौपदी अब जाओ, खूब बड़े प्रेम से जाओ। तो द्रौपदी में देखो कितना क्रोध, कितना प्रतिशोध बदला लेने की भावना, कितना बदला लेने की भावना थी। और द्रौपदी कितनी क्षमाशील थी, द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए को मार दिया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की मैं उसका सिर काट के लाऊंगा अश्वत्थामा का, तेरे सामने रखूंगा, उसके ऊपर तू बैठ करके और मृतक स्नान करना था। मृतक स्नान पाटे पर बैठकर नहीं, उसकी खोपड़ी पर बैठ कर स्नान करना। किसने कहा? अर्जुन ने कहा। अश्वत्थामा के पीछे दौड़े, अश्वत्थामा को पकड़ लाए, द्रौपदी के शिविर में लाकर उसको खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने देखा, देखते ही द्रौपदी के अंदर तो क्षमा का भाव उमड़ा। कहने लगे आपको शर्म नहीं आई? साक्षात द्रोणाचार्य के स्वरूप है, जिन द्रोणाचार्य ने आपको विद्या बताई वो इनको नहीं बताई, क्या हो गया हमारे बच्चे मार दिए? तो कोई बात नहीं, ये तो प्रारब्ध की बात है, भाग्य की बात है। मां रोदी रस्य जननी, इसकी मां रोएगी, ये द्रोण की पत्नी कृपी। द्रोण तो मर गए, बेटा और मर जाएगा, उसको कितना दुख होगा। बेटे मरने का दुख तो मुझे है ही, लेकिन मेरे पति तो बैठे हैं कम से कम, लेकिन पति भी नहीं, इकलौता बेटा है, एक अकेला बेटा, ये भी मर जाएगा, क्या करेगा? उस बिचारी कृपी का क्या हाल होगा? छोड़ देंगे, छोड़ छोड़। भीमसेन ने कहा क्यों छोड़ दे? नहीं छोड़ छोड़, अर्जुन मारो इसको, तुझे मैं आज्ञा देता हूं, कोई कहेगा तो मैं सच लूंगा। अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई द्रौपदी की बात टालने की। भगवान बड़े खुश हो गए द्रौपदी के व्यवहार से। अर्जुन ने कहा महाराज भीमसेन कहे वो करूं या द्रौपदी कहे वो करूं, परस्पर विरुद्ध आज्ञा है। भगवान ने कहा कि तुमको जो बहुत अच्छा लगे, दोनों आज्ञाएं अच्छी है, इन दोनों आज्ञाओं में तुमको जो बहुत अच्छा लगता है वो करो। तब उसकी मणि ले ली, मणि विदा कर दिया। इतनी क्षमाशील थी द्रौपदी। मनुष्य को कभी क्षमा करने का मौका मिले तो उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको क्षमा करने का मौका दिया है। युधिष्ठिर महाराज तो कहते थे कि अपने अंदर कभी किसी को अपराधी समझो ही मत, ऊपर से भले ही कह दो, अंदर से समझो कोई अपराधी है ही नहीं, किसको क्षमा करूं, कोई अपराधी नहीं, अपराधी है ही नहीं, करे क्या। सेठ जी को जितने ये चरित्र थे उनमें युधिष्ठिर महाराज का चरित्र बहुत अच्छा लगता था। कहा कि युधिष्ठिर जी महाराज एक जुआ नहीं खेलते तो युधिष्ठिर जैसा चरित्र पूरे हमारे पुराणों में, इतिहास में ऐसा कोई दूसरा चरित्र नहीं। एक जुआ खेलने का जो उन्होंने काम किया वो थोड़ा हमारी समझ के बाहर है, एक हमारी समझ के बाहर है, बाकी जो उनका अंदर का भाव था बड़ा उदार भाव था। तीन का उदाहरण था, नल राम युधिष्ठिरा, एक तो राजा नल, एक भगवान राम और एक युधिष्ठिर। भगवान राम की तो बात ही अलग, साक्षात भगवान थे। दूसरी बात, कितनी उदार थी द्रौपदी जी, कितनी उदार थी। स्नान कर रही थी उधर, दूर दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, नदी के वेग में उनका कपड़ा था वो बह गया, दुर्वासा ऋषि बिचारे लज्जा के मारे ठंडे पानी में बाहर आ नहीं सके, कपड़ा नहीं है, निर्वस्त्र हुआ, नग्गा हुआ, बाहर कैसे आए? उधर सब लोग खड़े हैं, माताएं बहने खड़ी हैं, दुर्वासा ऋषि कांपने लगे, दुखी हो गए, और वो ठंडा ठंडा पानी। द्रौपदी समझ गई कि ऋषि बिचारे बड़े शर्मिंदे हो रहे हैं, अपनी बढ़िया साड़ी झड़ी फाड़ी उड़ी, साड़ी फाड़ करके कहा कि लो महात्मा जी आपको कपड़ा दे। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया उसको कि बेटी आज तूने मुझे कपड़ा दिया है, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे को भी भगवान इसी प्रकार से लाज बचाने के लिए अथाह कपड़ा देंगे। वो आशीर्वाद काम आया, बढ़िया साड़ी राज रानी फाड़ के फेंक दे दिया। दुर्वासा ऋषि तो वरदान देने में तो कम और दुराशीष देने में, साप देने में प्रसिद्ध थे, पर द्रौपदी के व्यवहार से उनको आशीर्वाद दिया। द्रौपदी खुद दुखी होगी, बेचारे ऋषि दुखी हो रहे हैं। शिशुपाल के मारते समय में भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र यहां घूमने लगा और सुदर्शन चक्र को फेंका दिया, थोड़ा सा खून आया। भगवान के शरीर में खून होता नहीं है, भगवान के शरीर में पसीना होता नहीं है, भगवान के शरीर में मांस होता नहीं है, भगवान के शरीर में मल नहीं होता है, मूत्र नहीं होता है, भगवान के शरीर में कफ नहीं होता है, नाक में से शेडा नहीं निकलता, कान में से ठेठियां नहीं निकलती, आंख में गीड़ नहीं होता, भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं आते, ये त्वचा का विकार है। भगवान नित्य किशोर है, कृष्ण भगवान 125 वर्ष तक रहे पर उनके हमारे समान दाढ़ी आए, पहले काली आए, फिर सफेद आए, फिर बुढ़े हो जाए, ऐसा नहीं। नित्य किशोर भगवान, उनके बाप दादे बुढ़े हो गए पर भगवान बुढ़े नहीं हुए, क्यों? उनका शरीर वैसा होता ही नहीं। प्रकृति से अतीत भगवान का श्री विग्रह है, वो प्रकृति के मेले पदार्थों से थोड़ी बनता है कि ये मेला पदार्थ बनाएगा, लीला का है, लीला। तो भगवान ने एक लीला प्रकट की कि देखो मेरे खून आ गया। राजसु यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज का देश देशांतर के सब पुरुष वहां आए हुए, ये खून क्या है? द्रौपदी को ही दिखाई दिया, न जाने कितने लोग देख रहे, किसी के मन में नहीं आई। द्रौपदी उठ के आई, कोई लाज नहीं, संकोच नहीं, और अपना बहुत कीमती वो पहन रखा था वस्त्र फाड़ करके भगवान के ही अंगुली, भगवान ने काटी, भगवान ने अंगुली दे दी उसको। भरी सभा के अंदर द्रौपदी ने